रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कौरव सभा लगी हुई है। संजय ने अर्जुन का और कृष्ण का संदेश सुनाया है। धृतराष्ट्र बहुत भयभीत है। धृतराष्ट्र ने भी कल यही सलाह दी कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ये बोलते ऊपर से ही है धृतराष्ट्र जी। और पांडवों की प्रशंसा भी करते हैं, डरते भी हैं और दुर्योधन से मोह भी रखते हैं। संजय ने अंत में उनको बताया कि अर्जुन कालचक्र के समान सभी का नाश करेगा। जिस पक्ष में भीम और अर्जुन खड़े हों समझना चाहिए सारी पृथ्वी उन्हीं की है। अब आगे सुनिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, उस सभा के अंदर जितने लोग थे सबके मन में अनेक प्रकार की घबराहटें भरी हुई थी। अंदर से दुर्योधन भी डरा हुआ तो था, परंतु वो भी देखा कि इस समय भय दिखाना उचित नहीं है। वह सभा में खड़ा होकर कहने लगा, महाराज आप डरे नहीं, हमारे विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम काफी शक्तिमान हैं और शत्रुओं को संग्राम में परास्त कर सकते हैं। जिस समय इंद्रप्रस्थ से थोड़ी दूर पर वनवासी पांडवों के पास बड़ी भारी सेना के साथ श्री कृष्ण आए थे तथा केकयराज, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और पांडवों के साथ ही अन्य महारथी एकत्रित हुए थे, तो उन सभी ने आपकी और सब कौरवों की बड़ी निंदा की थी। वे लोग कुटुंब सहित आपका नाश करने के लिए तुले हुए थे तथा पांडवों को अपना राज्य लौटा लेने की ही सम्मति दे रहे थे। जब यह बात मेरे कानों में पड़ी तो बंधुओं के विनाश की आशंका से मैंने भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य को भी सूचना दी कि संभवतः पांडव लोग वनवास का व्रत छोड़कर अपने सहयोगियों के कहने से हमारे पर आक्रमण कर सकते हैं। उस समय मुझे भी यही दिखता था कि अब पांडव लोग राज सिंहासन पर बैठेंगे। मैंने द्रोण, भीष्म और कृपाचार्य को कहा था कि श्री कृष्ण तो हम सबका सर्वथा उच्छेद करके युधिष्ठिर को ही कौरवों का एक छत्र राजा बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बताइए महाराज हम क्या करें। क्या उनके आगे सिर झुका दें, क्या डरकर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध में जूझें? प्राणों का मोह तो होगा ही हमको, हम युद्ध में युद्ध करते हैं उस समय। युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने में तो निश्चित रूप से हमारी पराजय होगी, क्योंकि सब राजा उन्हीं के पक्ष में हैं। हम लोग तो देश भी, हम लोगों से तो देश भी प्रसन्न नहीं, मित्र लोग भी रूठे हुए तथा सब राजा और घर के लोग भी हमें खरी खोटी सुनाते हैं। ये बात मैंने रखी थी। मेरी ये बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने कहा था, राजन तुम डरो मत, जिस समय हम लोग युद्ध में खड़े होंगे शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे, हम में से प्रत्येक अकेला ही सारी पृथ्वी को, सारे राजाओं को जीत सकता है। आवे तो सही, हम अपने पैनों बाणों से उनका सारा गर्व ठंडा कर देंगे। उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदि का ऐसा ही निश्चय हुआ था। पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रु के अधीन थी, किंतु अब सब के सब हमारे हाथ में है। इसके सिवा यहाँ जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, वे भी हमारे सुख दुख को अपना ही समझते हैं। समय पड़ने पर ये आग में भी प्रवेश कर सकते हैं, समुद्र में भी कूद सकते हैं। ये आप निश्चय माने, आप शत्रुओं के विषय में बड़बड़कर बातें सुनने से विलाप करने लग गए, दुखी होकर पागल से हो गए। यह देखकर ये सब राजा लोग आपकी हंसी कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक राजा अपने को पांडवों का सामना करने में समर्थ है, इसलिए आपको जिस भाई ने दबा लिया है उसे दूर कीजिए। परंतु का क्या अर्थ है? भीष्म पितामह उस समय हमको बोलते थे कि मेरे बाणों के सामने कौन ठहरेगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे समान कोई धनुर्धर नहीं। आज वो ही कहते हैं कि तुम पांडवों को दो, राज्य का हिस्सा दो, पांडवों के पक्ष में बोलते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, क्या ये पांडवों से डर गए? महाराज आप जरा गंभीरता से सोचिए, जो पांडव मेरे से पूरा राज्य लेने के लिए सेना इकट्ठी कर रहे हैं, वे अब मेरे प्रभाव को जानकर मालूम है क्या बोलते हैं? उनकी भाषा बदल गई। ये पांडव बोलते हैं, हम हमारे राज्य को नहीं चाहते, हम तो केवल 5 गांव मांगते हैं। आगे ना हमारे बल के सामने पांडव झुक गए ना। दूसरी बात, आप जो कुंती पुत्र भीम को बड़ा बली समझते हैं, ये आपका भ्रम है। आपको अभी मेरे प्रभाव का पूरा ज्ञान नहीं है। इस पृथ्वी पर गदा युद्ध में मैं दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ योद्धा हूं, न कोई मेरे समान पहले हुआ और न कोई आगे होगा। जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अंग चूर चूर हो जाएंगे, वह मरकर धरती पर पड़ा मिलेगा। इसलिए इस महान युद्ध में आप भीमसेन का भय मत माने, आप उदास न हो, मैं तो अवश्य मार डालूंगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृपाचारी, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग ज्योतिषपुर के राजा शल्य और जयद्रथ, इनमें से प्रत्येक वीर पांडवों को मारने में समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उन पर आक्रमण करेंगे, तब एक क्षण में ये यमराज के रास्ते पर जाते हुए दिखाई देंगे। गंगा देवी की गर्भ से उत्पन्न हुए महर्षि कल्प पितामह भीष्म के पराक्रम को देवता भी सहन नहीं कर सकते। इसके सिवा उन्हें मारने वाला भी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पिता शांतनु ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे। तो ये बाणों से कैसे मरेंगे आप ही विचार कीजिए। दूसरे परमवीर हमारे गुरुदेव भरद्वाज पुत्र द्रोण है और उनका पुत्र अश्वत्थामा शस्त्रास्त्र में पारंगत है। आचार्य कृप को कौन मार सकता है? ये सब महारथी देवताओं के समान बलवान हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी की और आंख भी नहीं उठा सकता। आप विचार कीजिए पिताजी, जो अर्जुन द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीखा है, क्या वो द्रोणाचार्य से बढ़कर योद्धा हो जाएगा? मैं तो कर्ण को भी भीष्म द्रोण और कृपाचार्य के समान समझता हूं। संसप्तक क्षत्रियों का दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुन को मारने में अपने को ही पर्याप्त समझते हैं, अतः उसके वध के लिए मैंने उन्हें संसप्तकों को नियुक्त कर दिया है। महाराज, आप अपने हृदय से पांडवों की चिंता निकाल दीजिए, कोई भय मत कीजिए। बताइए, भीमसेन के मारे जाने के बाद हमसे युद्ध करने वाला कोई पांडवों में है? यदि आपको कोई दिखता हो तो बताइए। शत्रुओं की सेना के तो पांच भाई, एक तो पांच तो पांडव, एक धृष्टद्युम्न और एक सात्यकी, ये सात हैं बस। हमारी सेना के अंदर नाम गिनाने लगूंगा तो कहते कहते हमारी और बातें बाकी रह जाएंगी। मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम सुनिए, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, वाल्मीक, प्राग ज्योतिषपुर के राजा शल्य, अवंतिराज विंद और अनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुख, दुस्सह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविंशति, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण। ये मैंने आपको प्रमुख प्रमुख वीर बताए हैं। इसके अलावा मेरे पास 11 अक्षौहिणी सेना है, शत्रुओं के पास तो केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। फिर हमारी हार हो जाएगी। अतः इन सब बातों से आप मेरी सेना की सबलता और पांडवों की दुर्बलता समझकर घबराएं नहीं। पांडवों की सेना की दुर्बलता समझकर शांति को प्राप्त कीजिए, घबराए नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्योधन ने बड़ी बड़ी बातें तो कही, वो बीच में भीष्म और द्रोण को उपालम भी देता है, फिर मन में ये भी समझता है कि इनको नाराज करने में लाभ नहीं है तो प्रशंसा भी करता है। अंदर से दुर्योधन टूटा हुआ सा था। हे जन्मेजय, ऐसा कहकर दुर्योधन ने समय पर प्राप्त हुए कार्य की जानने की इच्छा से संजय से प्रश्न किया। दुर्योधन ने, संजय तुम पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, भला ये तो बताओ अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसी ध्वजाएं हैं, बताओ। संजय ने कहा, दुर्योधन इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, तुम पांच गांव की बात को पांडवों की घबराहट समझते हो या उनकी शांति प्रियता समझते हो, उनकी धार्मिकता समझते हो? दुर्योधन, तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तुमने पूछा है, उसका उत्तर देता हूं। अर्जुन के रथ की ध्वजा में देवताओं ने माया से अनेक प्रकार की छोटी बड़ी दिव्य और बहुमूल्य मूर्तियां बनाई हैं, और पवन नंदन हनुमान जी ने उस पर अपनी मूर्ति स्थापित की है, और वह ध्वजा सब ओर से एक योजन तक फैली है। एक योजन माने चार कोस तक तो ध्वजा है उसकी। नापासर को नहीं, चार कोस हटो, एक कोस तो चार कोस तक तो केवल ध्वजा है। पवन नंदन हनुमान जी ने उस पर अपनी मूर्ति स्थापित की है, और वह ध्वजा सब और एक योजन तक फैली हुई है। विधाता की ऐसी माया है कि उसके रास्ते में वृक्ष आदि कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। अर्जुन के रथ में चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए वायु के समान वेग वाले सफेद रंग के उत्तम जाति के घोड़े जुते हुए हैं। उनकी गति आकाश में, पृथ्वी पर और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में रुक नहीं सकती है, तथा उनमें से यदि कोई मर जाता है तो उस वरदान के प्रभाव से उसी जगह नया घोड़ा भी पैदा हो जाता है और उत्पन्न होकर भी 100 संख्या में कभी कमी नहीं आती। कितने घोड़े हुए? 100 घोड़ों का रथ है। कोई मर जाए वापिस पैदा हो जाए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय 100 घोड़े जिस रथ में है ये मैंने आज पहली बार सुना है। ऐसे पांडव रथ में बैठेंगे फिर मेरे पुत्र उनके साथ कैसे युद्ध करेंगे? किन किन वीरों को तुमने युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए वहां आते हुए देखा है, जरा मैं भी नाम तो सुनूं। संजय ने कहा, महाराज मैंने अंधक और वृष्णिवंशीय यादवों में प्रधान श्री कृष्ण को वहां देखा है, चेकितान को देखा है, सात्यकी वहां मौजूद था। चेकितान और सात्यकी ये दोनों प्रसिद्ध महारथी अलग अलग एक एक अक्षौणी सेना लेकर और पंचाल नरेश द्रुपद अपनी 10 पुत्र सत्र सत्यजीत और धृष्टद्युम्न आदि के सहित एक अक्षौणी सेना लेकर वहां पहुंच गए हैं। महाराज विराट भी शंख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरों के साथ एक अक्षौणी सेना लेकर युधिष्ठिर के साथ मिल गए हैं। इसके सिवा केकय देश के 5 सहोदर राजा भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों के पास आए हैं। मैंने वहां आए हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं जो पांडवों के लिए दुर्योधन की सेना का सामना करेंगे। महाराज युद्ध में वीरों की संख्या नहीं देखी जाती। दुर्योधन कहते हैं 11 और 7 4 अक्षौहिणी सेना का अंतर है। मैंने उनके अंदर का जोश देखा है, वो आपके पुत्रों में यहां चेहरे पर देखने से टूटा हुआ मालूम देता है। संग्राम के लिए उन्होंने पहले से ही विचार कर रखा है कि भीष्म जब युद्ध करेंगे हम शिखंडी को आगे करेंगे, उसके पृष्ठ पोषक के रूप में मत्स्य देशीय वीरों के राजा विराट रहेंगे, मद्रराज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिर के जिम्मे हैं, अपने 100 भाई और पुत्रों सहित दुर्योधन, पूर्व और दक्षिण दिशाओं के राजा भीमसेन के हिस्से में आए हुए हैं। आपको मालूम होगा भीमसेन ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन सहित उसके भाइयों को अकेला मारूंगा। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ से लड़ने का काम अर्जुन को सौंपा गया है। इसके सिवा और जिन राजाओं के साथ दूसरों को युद्ध करना संभव नहीं है वो सब अर्जुन के हिस्से में आए हुए हैं। अर्जुन ने कहा है कि मेरे हिस्से में छोड़ दो। केकय देश के जो महान धनुर्धर 5 सहोदर राजपुत्र हैं, वे हमारे पक्ष के केकय वीरों के साथ ही युद्ध करेंगे। केकय देश के लोग बटे हुए थे, सेना बटी हुई थी। दुर्योधन और दुशासन के सब पुत्र और राजा बृहद्बल, सुभद्रा नंदन, अभिमन्यु के भाग में आ रखे गए हैं। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में द्रौपदी के पुत्र आचार्य द्रोण का सामना करेंगे। सोमदत्त के साथ चेकितान का रथ युद्ध होगा। भोजवंशी कृतवर्मा के साथ सात्यकी लड़ना चाहता है। माद्री के पुत्र महावीर सहदेव ने स्वयं ही अपने आपके साले शकुनी को अपने हिस्से में ले रखा है और वो बार बार कहता है एक बार शकुनी को मेरे सामने आने दीजिए। तथा माद्री नंदन नकुल ने उलूक कैतव्य और सारस्वतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इसके सिवा इस महायुद्ध में और भी जो जो राजा आपकी ओर से युद्ध करेंगे उनके नाम ले लेकर युद्ध करने के लिए पांडवों ने अनेक योद्धाओं को नियुक्त कर रखा है। राजन, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। मैं उन सब को देख रहा था। मैं निश्चिंत होकर बैठा हुआ था। उस समय धृष्टद्युम्न ने आकर मुझसे कहा, संजय तुम शीघ्र यहां से जाओ, तनिक देर मत करो और वहां जो दुर्योधन के पक्ष के वीर है उनसे वाली गुरु और प्रतीत के वंशधरों से तथा कृपाचार्य कर्ण द्रोण अश्वत्थामा जयद्रथ दुशासन विकर्ण राजा दुर्योधन और भीष्म से जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के साथ भलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न हो देवताओं से सुरक्षित अर्जुन तुम्हें मृत्युलोक पहुंचा दें। तुम जल्दी करो, उनको जाकर कहो कि तुम जल्दी धर्मराज का राज्य उनको सौंप दो। वे लोक में सुप्रसिद्ध वीर हैं और ऐसे राज्य नहीं लेंगे। दुर्योधन से कहना कि पहले आकर अपने बड़े भाई के चरणों में शीश नवाकर क्षमा याचना करे, उसके बाद वो राज्य दे। सव्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं वैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन के रथ की रक्षा देवता लोग करते हैं। कोई भी मनुष्य उन्हें जीत ही नहीं सकता है। इसलिए तुम युद्ध के लिए मन मत चलाओ, ऐसा जाकर मेरी ओर से उनको बोल देना। संजय कहने लगे, महाराज उसकी वाणी में बड़ा बल था, चेहरे पर बड़ा तेज था, मन में बड़ा उत्साह था और उसके शब्दों के द्वारा ऐसा प्रतीत होता था कि इन पांडवों को जीतना आपके पुत्रों के द्वारा कभी भी संभव नहीं है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन तुम युद्ध का विचार छोड़ दो पुत्र, महापुरुष युद्ध को तो किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं बताते हैं। इसलिए बेटा तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए आधा राज्य बहुत है। देखो ना, न तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न वालिक उसके पक्ष में है और न भीष्म पिता में युद्ध चाहते हैं, न द्रोणाचार्य चाहते हैं, न अश्वत्थामा चाहते हैं, सोमदत्त शल या कृपाचारी भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। संजय तो बार बार युद्ध के लिए अपने को मना करते हैं। इसके सिवा सत्यव्रत पुरुमित्र जय भूरिश्रवा ये भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। बेटा मैं समझता हूँ अब तुम अकेले क्या करोगे, तुम भी अपनी इच्छा से ये युद्ध हटा दो और पापात्मा दुशासन कर्ण और शकुनी इनके कहने से तुम क्यों इनके काम में शांति के काम में बाधा डालते हो। मैं समझता हूँ तुम भी सब वास्तविक स्थिति को समझ रहे हो, लेकिन पापात्मा दुशासन कर्ण और शकुनी ये मिलकर के तुमसे एक काम करवा रहे हैं। बेटा विवेक से काम लो। इस पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी मैंने आप द्रोण अश्वत्थामा संजय भीष्म काम्बोज नरेश कृप सत्यव्रत पुरुमृत भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओं के भरोसे पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरे पक्ष में युद्ध न करें तो मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। इस युद्ध में पांडवों का संहार मैं करूंगा। कर्ण करेगा, मेरा भाई दुशासन करेगा, हम तीनों पर्याप्त हैं। या तो पांडवों को मारकर मैं इस पृथ्वी का शासन करूंगा या पांडव लोग मुझे मारकर इसे भोगेंगे। युद्ध के बिना यहाँ कोई दूसरी बात संभव नहीं है। मैं जीवन राज्य धन सबको छोड़ सकता हूँ किंतु पांडवों के साथ मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है। सुई की बारीक नोक से जितनी भूमि छिद सकती है उतनी भी मैं पांडवों को बिल्कुल नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, बंधुओं मैं क्या करूं? संजय, अब ये पुत्र दुर्योधन ऐसे बोलता है, मैं क्या करूं? मुझे तो तुम सभी कौरवों के लिए बड़ा शोक होता है। दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, किंतु जो लोग उस मूर्ख का अनुसरण करते हैं या करेंगे वे अवश्य यमलोक में जाएंगे। कहां तुमने दुर्योधन का त्याग किया है? संजय ने कहा त्याग किया है। अब मैं क्या त्याग में क्या बाकी रह गया? मैंने कह तो दिया इसको, इसके अलावा मैं क्या करूं? जब पांडवों के मार से कौरव सेना व्याकुल हो जाएगी तब दुर्योधन तुम्हें मेरी बात का स्मरण होगा। संजय, महात्मा कृष्ण और अर्जुन ने तुमसे क्या क्या बातें कही वो मुझे सुनाओ। मुझे कृष्ण की ओर ध्यान जाता है और अर्जुन की तरफ ध्यान जाता है। उन दोनों की और कुछ बात सुनने की मेरे मन में इच्छा है, सुनाओ संजय। संजय ने कहा, राजन, कृष्ण और अर्जुन को मैंने जिस स्थिति में देखा है ऐसी स्थिति आप क्या सुनेंगे? उन वीरों के विषय में क्या कहूं? ऐसी विचित्र उनकी स्थिति थी। मैं आपको सुनाता हूं। महाराज, आपका संदेश सुनाने के लिए मैं अपने पैरों की अंगुलियों की ओर दृष्टि रखकर बड़ी सावधानी से हाथ जोड़े जोड़े धीरे धीरे डरते डरते अंतपुर में गया। ध्यान से सुनना, ये एक झांकी है। अंतपुर में गया, उस स्थान पर अभिमन्यु और नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। कोई मेरे पर ईश्वर की कृपा थी, मुझे जाने क्यों ऐसे गुप्त स्थल के ऊपर जाने दिया। वहां मैंने देखा कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में है। अर्जुन के पास मैं गया। ये जब पहले मैंने नजारा देखा, कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में और अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में, कितना अभिन्न भाव है इनका। उस समय उनके मुखमंडल का मैंने तेज देखा। अर्जुन ने मेरी ओर देखकर कहा, आओ संजय, आ जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं फिर मिल लूंगा। नहीं, आओ, तुम हमारे हस्तिनापुर के दूत बनकर आए हो, आ जाओ, कोई संकोच नहीं है। बड़ा बल था वाणी में। अर्जुन ने मुझे सोने का पादपीठ दिया जिसके ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ा जाता है। मैं उस पर बैठ गया। बैठने के लिए मैं प्रयत्न करने लगा, फिर मुझे होश आया कि नहीं, मैं एक दूत हूं, मुझे मेरी मर्यादा में रहना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा भान हुआ कि इसका स्पर्श करके जमीन पर ही बैठना चाहिए। मैंने उस पादपीठ को प्रणाम किया और नीचे बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को एक आसन पर बैठकर और इतना स्नेह और प्रेम देख करके कृष्ण की स्त्री सत्यभामा की गोद में अर्जुन का चरण और कृष्ण के सामने अर्जुन का अपने द्रौपदी के गोद में चरण, मुझे ऐसा लगा, बड़ा भय लगा। मैं सोचने लगा कि ये मंद बुद्धि दुर्योधन कर्ण की बकवाद में आकर क्या करने जा रहा है। एक विष्णु के समान, एक इंद्र के समान, भगवान कृष्ण इंद्र के समान, नहीं, विष्णु के समान, अर्जुन इंद्र के समान, इनमें एक विष्णु के समान, एक इंद्र के समान वीरों के स्वरूप को ये समझता ही नहीं है दुर्योधन और कर्ण। उस समय मुझे यही निश्चय हो गया कि जो इन दोनों की आज्ञा में रहते हैं या ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प अवश्य ही पूरा होगा। हे महाराज, वहां अन्न पान आदि से मेरा सत्कार किया गया, फिर आराम से बैठ जाने पर मैंने हाथ जोड़कर उनका आपका संदेश सुनाया। संदेश सुनाते समय मेरी वाणी बार बार लड़खड़ा रही थी क्योंकि इस दृश्य से मैं कांप गया। इतना स्नेह और प्रेम जहां है वहां दुर्योधन की और उसकी सेना की क्या दशा होगी। मुझे निर्भय होते हुए अर्जुन ने कहा, संजय क्यों भयभीत होते हो, क्यों कांप रहे हो, आप तो दूत हो, इसलिए आप अपनी बात भय रहित होकर कहो। मैंने आपका संदेश सुनाया। संदेश सुनाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान अर्जुन की गोद से अपने पैर हटाकर बैठ गए और मेरी ओर देखने लगे। मैं घबरा गया और मन में सोचा कि देखो, आज मैं संदेश अर्जुन को सुना रहा हूं, लेकिन इन संदेशों से कृष्ण के मन में कितनी तकलीफ हुई है और वे अपना सा मान